यद्यपि ये उनके भाई लगते हैं, किंतु भाई की अपेक्षा इनमें भाव का, भक्ति का भाव है, इसलिए अधिक। इसलिए इनसे भी अधिक और कौन श्रेष्ठ हैं जो भाव में इनसे भी हों? गोपियां। उद्धव जी से श्रेष्ठ नंद बाबा जी हैं, यशोदा जी हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ ये गोपियां हैं। क्यों? इनमें महाभाव इत्यादि तक भक्ति का जो चरम उत्कर्ष है वो इन लोगों में विद्यमान है। ये भी भक्ति ही है, मादन मोदन इत्यादि तक भक्ति ही है, श्रद्धा से भी आरंभ।
गोपियों में स्वयं प्रतिष्ठित है, उद्धव जी केवल दर्शक
हैं। दर्शक इनमें भी माने भक्ति है, किंतु उतना ही तक भक्ति है, ये सब भाव नहीं है। इसलिए गोपियां उनसे भी हजार गुना श्रेष्ठ हैं। अब कहते हैं कि गोपियों की तो बात छोड़ दो, ऐसा यदि गोपियों जैसा कोई संग मिल जाए तो उद्धव जी के संग से भी अधिक प्रभाव। उद्धव जी श्रेष्ठ भक्त हैं, उनका संग हो जाए, नारद जी का संग हो जाए तो कहना ही क्या। किंतु हम लोग सोचते हैं कि उनके संग की अपेक्षा भी महत्वपूर्ण संग किनका है? गोपियों का, या गोपियों के भाव में जो विभावित हो हम लोग उसकी आशा नहीं रखते। किंतु हाँ, गोपियों के भाव में यदि कोई विभावित रहने वाला भक्त है, या गोपियों के भाव में यदि लोभ भी उत्पन्न हो गया हो तो उसका ही संग सबसे श्रेष्ठ है। उन गोपियों का महात्मा यहाँ पर स्वयं कृष्ण अपने आप करें, इसके लिए बतलाए महाप्रभु जी। महाप्रभु यही देने के लिए आए, तो महाप्रभु जी सबको घर घर में दरवाजे में जाकर के दिया। इन्हीं लोगों के माध्यम से सनातन गोस्वामी के अंदर में प्रेरणा दी, रूप गोस्वामी के अंदर में प्रेरणा दी, रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर में प्रेरणा दी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के, जीव गोस्वामी के, और प्रेरणा दे करके क्या किया, जगत में शब्द उन्होंने इच्छा की। यही उनकी चरण धूली है, चरण धूली इसी को कहते हैं, इसी चीज को हमको ग्रहण करना है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति गोपियों की चरम महिमा का यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं। मैंने कहा जिसे गोपियाँ सबसे श्रेष्ठ हैं वो कैसी हैं, ये सब चीज़ अभी तक बताया, विशेष करके इसमें बताया गोपियाँ कृष्ण के कृष्णचंद्र के शक्ति चरणों में या उनके प्रति ऐसी प्रतिबद्ध हैं, अनुसंग हैं, बद्ध हैं, स्वम आत्मानम अदः तथेदम, उन्होंने सब कुछ अपनी आत्मा को भी तथा इदम अदः इस शरीर को, और शरीर से बाद में और जो चीज़ें हैं, इदम उनके भाई पुत्र पति ये सब चीज़ों को, सब चीज़ों को भी एकदम विस्मरण हो गई। कैसे बतलाया? जैसे नदियां समुद्र में मिलकर के सब कुछ भूल जाते, अथवा मुनि लोग समाधि के द्वारा अपना नाम और एकांश में उदाहरण, सर्वांश में नहीं, उन मुनियों से इनकी तुलना नहीं हो सकती, तो भी एक दिया संसार में और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, इसलिए एक देशी उदाहरण। नदियों का समुद्र में मिलने का एकांश वो दिखलाया, सब कुछ भी स्मरण हो गई, सब कुछ भी स्मरण हो गई। उस समय अपना जो कुछ था वो नहीं, कुछ नहीं याद रहा, किंतु कृष्ण का नाम रूप लीला ये सब स्मरण रहा। इसलिए नदी से उस मिलने से इनका वैशिष्ट, और मुनि लोग अपना नाम रूप भूल जाते हैं और वो ब्रह्म में मिल जाते हैं, ये ऐसा नहीं,
ब्रह्म को भी भूल जाते हैं,
ब्रह्म को भी भूल जाते हैं, ब्रह्म में ममता नहीं होती और न तो इस साधक में ममता, किंतु कृष्ण के भक्तों में और कृष्ण दोनों में ही ममता होती है। पर ये मेरे भक्त हैं, मेरे प्राण प्रिय भक्त हैं, मैं इनका हृदय हूँ, ये हमारे हृदय। वैसा ब्रह्मज्ञानियों को योगियों को ऐसा नहीं होता, अनुराग नहीं होता। ये सब एक एक कथाएं जो हैं सनातन गोस्वामी की अनुभव युक्त, और इसका कोई माने मूल्य जागतिक नहीं है, इसलिए इनके चरणों में हम लोग बिक जाते हैं। जो नहीं जानते हैं वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं, न तो गुरु के चरणों में विश्वास, न वैष्णव के चरणों में विश्वास, नहीं ये भक्ति में विश्वास। अपनी स्वतंत्रता लिए हुए, अपनी थोड़ी सी भी स्वतंत्रता है, क्योंकि इनका इसमें प्रवेश नहीं है। वो साधुओं के संग में भी नहीं रहेंगे, क्यों? उनको ताप लगता है, उनसे बहुत ताप लगता है, बहुत दूर भागते हैं। जहाँ आराम से स्वच्छंदता से बिना किसी अंकुश के खा पी करके आराम कर सकें, सो सकें, कोई बोलने वाला न, वो स्थान उनके लिए। ये सब ऐसे नहीं होगा, इसलिए सनातन गोस्वामी की इन कथाओं का जो मर्म सोचेंगे वैष्णव के चरणों में अपने को चीर विकृत कर देंगे। इसलिए हम लोग इनके चरणों में, हम रूप सनातन जी के गोस्वामियों के गुरु परंपरा के चरणों में हम लोग अपने को तो उसी को कृष्ण कहते हैं, उन गोपियों की महिमा छोड़ो, उनकी महिमा को छोड़ो। मत कामा रमणम जार जारम अस्वरूप विदो अबला ब्रह्मा मां परमं प्रापु संगात सत सहस्र। अबला, अबला किस लिए? ऐसी स्त्रियां जिनको न तो विद्या है, न रूप है, न कोई साधन है, न स्वरूप तत्व का ज्ञान है, कुछ भी नहीं, ऐसी पुलिंदी स्त्रियां भी सब हजारों लाखों गोवर्धन में रहने वाली, लकड़ी और गोबर बिनने वाली ऐसी स्त्रियां इन गोपियों के संग से, यहाँ संग से माने क्या, डायरेक्ट संग नहीं, उनके संग कृष्ण से, कृष्ण का संग कुमकुम से, कुमकुम का संग घास से, और उस घास का संग हुआ इन से। देखो कितनी दूर की बात, जैसे इस श्लोक में बतलाया गया, जस्या कदापि दशनांचल खेद धन्याति धन्य पौने कृतात्मा जोगेन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमस्त विश्वानु भूति से। कहते हैं कि राधिका जिस दिशा में खड़ी है उस दशा दिशा से हवा आ रही, राधिका वो हवा कदम्ब के, उधर जो कदम्ब हैं कदम्ब के से सुगंध लिया, कदम्ब के फूलों से, और लग करके राधा कुंड के पानी को स्पर्श किया, जरा सुशीतल हो गई, सुगंधित तो थी और थोड़ी सी सुशीतल हो गई, और राधा जी के अंचल में लगी, और राधा जी के अंचल का गंध लिया, उनके अंग का नहीं, उनके वस्त्र का गंध लिया, और वो गंध लेकर के हवा धन्याति धन्य पौने न कृता, जीवन ने उसको, कृष्ण ने उसको स्पर्श करके अपने जीवन को कृता, आज हमारा जीवन, इसलिए हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं। ऐसे ये करें गोपियों की तो बात छोड़ो।
हमारे बार उदाहरण ये था कि कृष्ण से जमला उदुफल का, उदुफल से रस्सी का, रस्सी से जमला।
मत कामा रमणम, सनातन गोस्वामी जी टीका जो कर रहे हैं हम लोग अपने, साधारण इसका ये अर्थ है मेरे स्वरूप के विषय में जो सर्वथा अनभिज्ञ हैं, मेरे स्वरूप को नहीं जानते, अपने भी स्वरूप को नहीं जानते कि मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं यही शरीर हूँ, और कृष्ण के स्वरूप को भी नहीं जानते होकर के भी गोपियों के संग के प्रभाव से पुलिंदी इत्यादि एक दो नहीं हजारों लाखों वन जातियां भी, वन जातियों की स्त्रियां भी जो कि अबला हैं, कैसी अबला, न ज्ञान है, न विद्या है, न शुभ कर्म है, न कोई शुद्ध ज्ञान है, न कोई शारीरिक बल है, न विद्या है, न बुद्धि है, न सौंदर्य है, न कोई गुण वैसा है। ऐसी अबला जो स्त्रियाँ हैं पर ब्रह्म स्वरूप हमको लाभ करते हैं, इन गोपियों के बहुत दूर के संग से ही इनको प्राप्त कर दिया है। यद्यपि वो ज्ञान रही तथापि सब सत्संग के गुण से, किसके संग से, घास के संग से, घास के संग से नहीं, घास में जो कुमकुम लगा उसके संग से नहीं? कैसे धूल लगी है, वैष्णव कोई जा रहा है उसके चरण से धूल उठी और उस धूल में कोई अभिषिक्त तो उसकी हवा उड़ करके शरीर, वैष्णव लोग इसी लालसा से धाम में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, गोवर्धन में जाते हैं, नंदगांव में जाते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड में जाते हैं। किस लिए, किस लिए जाते हैं? राधा जी का दर्शन करने के लिए, कुंड का दर्शन करने के लिए? कुंड का दर्शन होगा, हम समझते हैं कि संभव है, जड़ नेत्रों से क्या हम करेंगे, किंतु वहाँ पर उड़ रही जो धूल है किसी न किसी रूप में है, वो यदि लग जाए तो हमारा जीवन, ये गोपियों का ही संग होगा। वो कुंड किसका है?
गोपियों का,
गोपियों का, राधा जी का कुंड। इस भावना से तो जाते हैं, इसलिए वो वहाँ पर भावना काम करती है। तो यदि उसकी धूली का इतना प्रभाव है तो उनका कितना प्रभाव होगा गोपियों का, यही चीज दिखला रही है। ओ सखे, उद्धव जी कहते हैं सखे, सचमुच में कृष्ण के ये सखा है, घूम जनो ना है रे सखे। देखो तो ये कितना मन से सब लोग सुन रहे हैं, अहो सखे, बड़े प्रेम के साथ में कह रहे हैं अहो सखे। सखा माने किसको कहा जाता है? समान जो होता है, समान भावना वाले, समान उम्र वाले, समान गुण वाले, इनमें सख्य भाव है। हे सखे, गोपियों की अभिष्ट पूर्ति हुई इसकी बात छोड़ दो, गोपियों ने कृष्ण की जैसी सेवा की है और उनकी सिद्धि हुई, उनको जन्म नहीं लेना पड़ा, एक श्लोक में ऐसा आया, फिर उनको संसार कभी नहीं हुआ, कहाँ पर दर्शन स्कंद अज्ञान, उनको फिर संसार नहीं व्याप्त हुआ,
नहीं संसार अज्ञान संभव किया।
गोपियों के लिए लिख, ये किस लिए लिखा,
साधारण
किस लिए लिखा, वंचना करने के लिए, लोगों को वंचना करने, इसलिए भागवत में भी वंचना है। भागवत इतने उच्च हैं, भगवान ही का स्वरूप है, किंतु वो भी वंचना करते हैं लोगों को, उनकी ये सब चीज़ों को, उच्च भावों को कोई समझ नहीं सकेंगे, और जो उसी में रहना चाहते हैं, जो वंचित होना चाहते हैं, उनको वंचना भी कर देते हैं। वो वंचना नहीं करते बल्कि वो स्वयं वंचित हो जाते हैं, जैसे कपिल देव जी ने सगर के पुत्रों को नहीं भस्म किया, ये लोग अपने कर्म से स्वयं जल गए, इसलिए कुछ लोग भागवत के विचारों से अपने आप वंचित हो जाते हैं। तो गोपियों के महात्मा का वर्णन क्या करें, उनकी सिद्धि हुई कि नहीं ये मत पूछो, संसारिक लोग पूछते हैं। परीक्षित महाराज जी ने संसारिक विचारवानों की बात लेकर के पूछा, गोपियों ने तो उनको परमात्मा भगवान तो जाना नहीं, केवल जार बुद्धि देखा और रमण के रूप में देखा, और उनको ऐसी सिद्धि हो गई, उसके लिए ये बतला रहे। उनकी बात छोड़ो, हम समझते कि यदि कोई प्रीति के साथ में गोपी 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 यही मंत्र जप करे तो फिर उसकी सिद्धि हो जाए, कृष्ण यदि सुन लिया जी, और कोई मंत्र नहीं जपता है, बस गोपी 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 मंत्र जपता है, गोपी में कैसे हुआ, नमः लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोप्य नम
गोप्य नम
गोप्य नम हाँ गोप्य नम गोप्य नम कर रहा बस यही मंत्र हो गया, नहीं करके गोपियों को प्रणाम है, गोपियों को प्रणाम है, तभी ये मंत्र बहुत ऊंचा है। उनके संग के प्रभाव से पुलिंद प्रदीप प्रभृति नीच जातियां सप्त सहस्त्र कितना गिनाए, कृष्ण खेल रहे हैं गोपियों के साथ, दोपहर की लीला, और खेलते खेलते कभी कृष्ण हारते हैं कभी गोपियां हारती हैं, उस पर पण लगाए जा रहे हैं। तो कुछ पण लगा तो उन्होंने पण लगाने के समय में ही राधा जी ने ललिता विशाखा को कहा जो वो मेरी सखी है सहेली उसको बुला लो गोवर्धन वाली, माने कौन सी गोवर्धन की सहेली,
पुलिंदी
कन्या, उनको बुला लाओ, वो मेरी प्रतिनिधि रहेगी, हमारे तरफ से जो कुछ देना और लेना होगा वो लेगी, जोड़ी भी बैठेगी ठीक, वो भी श्याम वो भी श्यामा इसलिए जोड़ी ठीक बैठेगी, हमसे इनकी जोड़ी ठीक बैठती नहीं, इसलिए उनको बुलाया और वो सचमुच में आ गई। आईन की सभा में कुछ लज्जित होकर के बैठी, क्यों आई, क्यों जरा ढीठ भी थी, इसलिए थी कृष्ण के प्रति उसकी काम हो गया था, केवल लोभ ही नहीं, क्योंकि वही पुलंदी समझो जैसे उनके चरण में संलग्न कुमकुम का सेवन किया और उसकी आधी सब जितनी थी
दूर हो गई,
सब दूर हो गई, वो साधारण नहीं, इसलिए ढीठ तो थी किंतु उस सभा में जब आई एक एक से सुंदरी अपूर्व गोपियां हैं और उसमें आकर के राधा जी ने इशारा किया कि उसको वहीं पर बैठा दो, कहाँ बैठा दो, कृष्ण के सभी कृष्ण सब कुछ करके इधर उधर होने लगे और उसको वो बैठ गई भी जानबूझ करके, और यह कहिए मेरी प्रतिनिधि रहेगी, यदि मैं जीत गई तो आपसे जो कुछ लेना है ये लेंगे, और यदि आप जीत गए तो जो कुछ हमको लेना देना है वो सब इसका, सब जितनी गोपियाँ थी सब हंसने लगी। अच्छा बतलाओ तो ये साधारण चीज़ है ये पुलिंदी होना भी गोपियों के समाज में पहुँच करके, यद्यपि वहीं तक खत्म हो गया पासा, अब खत्म हुआ नहीं, कृष्ण कहा जो मैं इस पर अपने खेलूंगा बस, अब दूसरी बात है सब चले। तो इस तरह से ये पुलिंदी का कितना सौभाग्य है हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे कितनी नारी रामलीला में देखा जाता है सबरी इत्यादि का, किंतु ये सबरी से तुलना करो इस पुलिंदी की
आसमान जी
कहाँ अंतर, ये गोपियां जो श्रेष्ठ भक्त हैं और वो मातंग ऋषि थे एक भक्त थे तो उनके संग से हुई, वो हुआ ऐश्वर्य पूर्ण भक्त इसलिए हाथ जोड़ करके सबरी उनको करें, और ये सुखचाती हुई सिमटती हुई टेढ़ी होती हुई कृष्ण के समीप जाकर के बैठ जाती, ये नहीं होगा। कृष्ण को प्रणाम किया पुलिंदी ने, प्रणाम करने की कोई जरूरत भी है, एक तरह से राधा जी ने उसको सहेली का रूप दे दिया, ये कितना ऊंचा भाव है। इसलिए कहते हैं उसका क्या भाव था, जार भाव, कहते हैं जैसे ऐसे ही सत कामा इत्यादि श्लोक में, मत कामा श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, इसकी टीका है अबला जाति, गोपियों के लिए कई कई पर अबला शब्द का उल्लेख है, भक्तों के लिए भी ऐसा है, तो यहाँ पर बतलाया गया अबला माने जाति, उच्च जाति नहीं, क्रिया नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति का कोई साधन भी नहीं, वो नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन ये सब करती थी, क्या करती थी वो पुलिंदी कन्या, गोबर कंडे पीती थी, किंतु हाँ एक चीज सुनती थी
गोपियों की महिमा,
गोपियों की काशंग में गोपियों की महिमा सुनती और गोपियों के मुख से कृष्ण की भी उनके प्रति उनका लोभ था। इस प्रकार से इनको अबला कहा गया। हम लोग उससे भी लाखों गुण में अबला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे समान कुटिल खलकामी कोई नहीं है। मौसम कुटिल कोसम
मौसम कोई कुटिल खलकामी
क्या है याद है? मौसम कौन कुटिल खलकामी? ठीक कहते हैं उन्होंने, ऐसा ही जो कहा है ये ठीक कहा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी ऐसा बताया, गोपीनाथ मम निवेदन सुन हमारा जीवन सदा पापे रहता नहीं का पुण्य रलेश परे रुद्दे दिया छी जे कतो दिया छी परे रुद्दे इत्यादि। दूसरों का दुख देख करके बड़ा आनंद होता है और सुख देख करके हमारा हृदय बैठ जाता है। इस तरह से हम लोगों का भी जब विचार करेंगे तो देखेंगे ये करीब करीब ऐसा ही। इसलिए कहते हैं वो अबला साधु संघ का बल नहीं, बल किस चीज का है? अनर्थों का बल है। अनर्थ है खूब प्रचुर बल। स्वतंत्र हम लोग हैं, किसी गुरु वैष्णव की बात नहीं मानेंगे। गुरु की तो बात छोड़ दो, गुरुआइन ने कहा रात भर जाना पड़ेगा वर्षा में, वर्षा हो रही है, लकड़ी ले आना है सूखी। गुरुआइन ने कहा, किसको कहा? पर ब्रह्म को कहा और वो बेचारे चले गए रात भर ठिठुरते रहे। हम कहेंगे गुरु जी हमसे ये बात नहीं होगा, आप आदेश दें तो मैं अपने घर चला जाऊं, हम ही घर चले जीते पर हाँ यही सब आद सेवा हमार द्वारा होवे ना, हमसे ये नहीं होगा। कहिए से सही सुनो बनो, अच्छी तरह से सेवा करो। कहिए गुरु जी हमसे से सही सुनो, हम तो 10 जन्म में भी नहीं हूँ, तो आप आदेश दे दीजिए ये चले। आदेश देने की जरूरत है? आदेश से तू आया। इसलिए हम लोग अबला है, बल कुछ नहीं है, न साधन का बल। पूछो जैसे गुरु जी ने कहा कि 1 लाख हरिनाम करो, कितना लाख हरिनाम करते हैं? चित्त को नियंत्रित करके कितना करते हैं? अपने शरीर को सेवा में एकदम रगड़ दो, कितना करते हैं? दिन में मत सो, गुरु जी मैं अधिक नहीं सोता, मैं 4 घंटा दिन में सोता हूँ और तबीयत खराब होने पर और 2-3 घंटा लगा देता। क्या क्या सेवा करता है? तो हमारी 2 सेवा है, शयन सेवा और प्रसाद सेवा, ये 2 हमारी प्रधान सेवा है। इसे भजन चलाएगा, ये सब अवल के ही भाई। देखो ये सब चीजों को ठीक रख करके भगवान से प्रार्थना, हमारे हृदय में चित्त बल प्रदान करें। तो इसलिए करें, जाति क्रिया ज्ञान भक्ति इत्यादि का बल नहीं है, इसलिए अबला है। और अस्वरूपविद, अस्वरूपविद माने क्या? न स्वरूपविद, किसका स्वरूप? भगवान का नहीं,
स्वरूप और अस्वरूप
अपना भी, भक्ति का और अनर्थ, चारों का स्वरूप नहीं है। अनर्थ को ही वो अर्थ बतलाते हैं। सबसे बड़ा यही है अनर्थ हमारा, अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ मान लेते हैं। ये कौन सब बोल रहा है? इसलिए ये सब समझना होगा, वैष्णव के अतिरिक्त और दूसरी जगह नहीं समझेंगे हम। अपना स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, आप ये सब चीजें नहीं जानें। इसलिए ये आत्मस्वरूप, परस्वरूप, भक्ति स्वरूप, अनर्थ स्वरूप नहीं जानने से केवल मात्र हरिनाम और दीक्षा ले लिया, ये भगवान का भी भजन नहीं, कोई संबंध ही नहीं। अभी इसलिए यथार्थ भजन कब होगा? इन चारों तत्वों को जानने के बाद में संबंध ज्ञान के सहित में अनर्थ रहित रूप में जो नाम करेंगे वो संख्या। इसलिए ऐसा होने की चेष्टा करें। ये एक थोड़ी सी आशा ये दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं जानती थी ये पुलिंद कन्या आत्म तत्व का ज्ञान में, हमारा दर्शन भी नहीं कृष्णकर, दर्शन के अभाव में हमारा सौंदर्य ज्ञान ये भी नहीं। इसलिए गोबर या कंडे लकड़ी इत्यादि बिनने के बहाने ये जाती थी जंगलों में, तो इन पर ऐसी कृपा कैसे हो गई? वृंदावन वास का कोई महात्मा है कि नहीं? ब्रज में, ब्रज में वास करने का ये कुछ महात्मा है। इसी के लिए करें तृण में लग्न, कुमकुम और उसके साथ में इनका संपर्क हुआ, उसका स्पर्श से गोपियों के संग हेतु मत काम, मत काम माने हमारे प्रति कामना, अर्थात हमारे प्रति कामयुक्त होकर के हमारी भावना किया करती हैं, कामना किया करती हैं। ये वृंदावन में रहने से वृंदावन वास का भ्रमण का एक इनडायरेक्ट फल भी है। इनडायरेक्ट माने क्या? व्यतिरिक्त अवान्तर फल। अवान्तर फल क्या हुआ? अवान्तर फल उसी को ये बतला रहे हैं। अस्वरूप विद होने पर भी उनको ये कामना उत्पन्न हो गई और इनको ये चीजें मिल गई अनायास रूप में, उनका संग हो गया। ब्रजभूमि के अवान्तर फल से स्वरूप का ज्ञान उनको हो गया अपने आप। ब्रजभूमि ऐसी चीज है, किंतु श्रद्धा होनी चाहिए। रिक्शे वाले डकैत चोर भी तो रहते हैं ब्रज में, साधुओं को भी मार डालते हैं दो पैसे के लिए, दो एक कंबल के लिए। तो वो लोग ब्रजवास में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं कि नहीं? कुछ थोड़ी सी रहनी चाहिए भावना। और गोपियों के संग के प्रभाव से परम प्रेम भक्ति का उदय उनको हुआ, वो भी इनडायरेक्ट रूप में। गोपियों का संग नहीं, गोपियों के अंग युक्त कुमकुम का वो भी तीर्ण के ऊपर में होने से बहुत दूर से उनका संग। इसलिए हमारे माधुर्य को अनुभव करने लगी या किया। करें दो प्रकार की चीजें हैं, एक ऐश्वर्य ज्ञान, एक माधुर्य ज्ञान। इन्होंने ऐश्वर्य ज्ञान के अंदर में प्रवेश नहीं किया। ऐश्वर्य ज्ञान क्या? यही जो अभी बतला रहा था, स्वरूप ज्ञान, पर स्वरूप ज्ञान, भक्ति का तत्व ज्ञान, अनर्थों का ये ज्ञान, ये सब क्या चीज है? ये सब चीज साधन के अंतर्गत में आता है। इनको ये कुछ भी नहीं था, केवल उन्होंने कृष्ण को दर्शन किया। गोपियों की ऐसी महिमा उन्नत कोटि की, बस गोपियों के संग से इनको एकदम गैलप करके चली गई। साधन भजन कुछ नहीं करना पड़ा। अंततः इस जन्म हम देखते हैं कि कोई साधन नहीं करना पड़ा, तो हम लोग भी साधन ना करें गोपियों का संग हो जाएगा? ये असंभव। हम जब विचार करते हैं देखते हैं कि इस पुलिंदी का जन्म गोवर्धन में क्यों हुआ, क्यों हुआ, और कृष्ण के प्रकट काल में क्यों हुआ? जरूर कुछ है कि नहीं है? ऐसे ही हो गया, कुछ कारण है। नहीं कारण से कृष्ण की कृपा, इसी को अहित की कृपा कहते हैं। यदि कुछ नहीं था तो यह अहित की कृपा है। इसलिए अहित की कृपा के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा, साधन भजन करना पड़ेगा। ऐसे वैष्णवों को खोज करना पड़ेगा। इसलिए बतलाया कि कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से जो चीज नहीं मिलती है, रसिक वैष्णव के संग से वो अनायासी चीज पाई जाती है। इन गोपियों ने उनको कोई तत्व उपदेश नहीं दिया, जैसे उद्धव को सामने पा करके उनको कितने भक्ति की बातें कही, इनको कुछ कहा? कुछ नहीं, कभी अपने आप। इसलिए गोपियों के अवान्तर संग ब्रज में रहने से, उसके अवान्तर फल से हुआ क्या, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त इत्यादि नहीं हुआ, तभी गोवर्धन में आकर के और ये चीजें उनको मिल गई। और गोपियों के संग से क्या हुआ, गोपियों ने उनकी सभा में बुलाया ना कि मेरी उस सखी को, सहेली को बुला दो, और कृष्ण के पास में एकदम बैठा दिया जहाँ पर गोपियाँ जी समाज में बैठ रही हैं और सभी मिलकर के हंस रही हैं, और उसी को निमित्त बनाया। देखो कितने उच्च भाव को इसने प्राप्त कर दिया। जैसे एक कीड़ा है, गंदा कीड़ा, ठाकुर के सिर पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, किंतु एक फूल में प्रवेश कर जाए, और फूल में प्रवेश करने के बाद उस फूल को ठाकुर जी के सिर पर चढ़ा दो या माला बना करके गले में लगा दो, तो भगवान के गले में लिपट जाएगा।